बुलबुल ने पूछा फूल से कि फूल तुम गीत क्यों नहीं गाते। तो गीत ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया होगा, मेरी सुगंध ही मेरा गीत है। ठीक हम सब के बीच पधारे हुए आदरणीय राजू भाई, उनके लिए हम ऐसे ही कहेंगे कि उनका कर्तव्य ही उनका परिचय है। हम सब प्यारी मुरली में प्रश्न उत्तर वरदान स्लोगन रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं जरा, तो इन सब के प्रणेता कहेंगे जो ज्ञान रत्नों से ही सदा खेलते और खिलवाते हैं। कई प्रकार के ज्ञान बिन गुंजन नहीं, नहीं योग बिन श्वास, ऐसी जिनों की तपस्या है हम सबके बीच, इतनी दिव्य और महान आत्मा पधारी है, हम सब अपनी बहुत प्यार भरी ताली के साथ, एक हाथ की ताली के साथ स्वागत कर रहे हैं इस कर्मयोगी तपस्या भट्टी में। आदरणीय राजू भाई आपका तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
तपस्या मास में इतनी सुंदर गुफा के बीच में बैठ करके तपस्या करने का सुंदर अवसर आप सबको मिला है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए होंगे। जनवरी मास में चारों तरफ तपस्या की गूंज है, सब तरफ भट्टियां हो रही हैं, बड़ी लगन के साथ कोई अखंड योग की भट्टियां कर रहे हैं, कोई 108 घंटे की कर रहे हैं, भिन्न भिन्न रीति से बाबा की अव्यक्त पालना का रिटर्न दे रहे हैं। बाबा ने हम सबकी 46 वर्षों से अव्यक्त रूप में पालना की है और बाबा चाहते हैं अव्यक्त पालना का रिटर्न, मेरे बच्चे तपस्वी मूर्त बन करके बाप समान बन जाएं। तपस्या शब्द ही अपने आप में अलौकिक है। जब हम इस देह से न्यारे होकर अंतर गुफा में बैठकर बाबा से मिलन मनाते हैं, देह और देही, शरीर और आत्मा की अलग अनुभूति होने लगती है, उसको ही यथार्थ तपस्या कहा जाता है। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर एक बाबा दूसरा न कोई, एक की लगन में मगन हो जाए, वही सच्ची तपस्या है। और उस तपस्या से बहुत सी प्राप्तियां हैं। आंतरिक सुख की अनुभूति तो होती ही है, कहा भी जाता है योगी तपस्वी वो है जो परमानंद की अनुभूति करता है। गोप और गोपियों को तो अतीन्द्र सुख का अनुभव हुआ, बाबा की मुरलियों से, पालना से, मिलन से अतीन्द्र सुख की अनुभूति में हम सब रहते हैं। लेकिन जब आत्मा परमात्मा का सच्चा मिलन होने लगता है, एक की लगन में आत्मा मगन हो जाती है, जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है वो आनंद में परिवर्तित हो जाती है। आनंद की भेंट कोई चीज से नहीं की जा सकती। तो हम सब 3 दिन में क्या अनुभव किया, क्या किया आप सबने? परमानंद की अनुभूति हुई कि अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहे? अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से उपराम कर देता है, इंद्रियों का सुख उन्हें आकर्षित नहीं करता, और परमानंद की अनुभूतियां सब पूरे जगत से उपराम कर देती हैं, न्यारा बना देती है, कोई आकर्षण नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई चाहनाएं नहीं, कोई इच्छा नहीं, एक बाबा के प्यार में उस आनंद स्वरूप स्थिति में मग्न हो जाते हैं। तो सभी ने ऐसा अनुभव किया है ना 3 दिन में कि नहीं किया? किया। आज लास्ट क्लास है ना भट्टी का, वास्तव में हम सब योगी तो जब से बाबा के बच्चे बने बन गए, योग तो लगा ही रहे हैं, एक बाबा के साथ ही योग है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि मेरे योगी बच्चे योगी के साथ साथ प्रयोगी बने, प्रयोग करना भी सीखें। बहुत बड़ी शक्तियां हैं योग की, और उन योग की शक्तियों को यदि हम प्रयोग में ले आए तो आत्मा सिद्धि स्वरूप बन जाती है। किस तरह से प्रयोग किए जाएं? 3 दिन भट्टी कर ली, अच्छे अनुभव हो गए, बहुत अच्छा सबके मुंह पर आएगा, लेकिन उसके बाद उसके स्वरूप को, उन स्थितियों को हम और बढ़ाते चलें, और कोई भी ऐसी नेगेटिविटी अंदर हो, कोई भी ऐसे संस्कार हो, कोई भी हमारे मार्ग के अंदर रुकावटें आ रही हों, वो सब समाप्त होती जाए, प्रयोग ऐसा किया जाए जो पुराने संस्कारों का संस्कार हो जाए। बहुत समय से कोई न कोई संस्कार चलते आते हैं जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन का मूल लक्ष्य है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, सबसे पहले तो हर एक अपने आप से बात करे कि जैसा बाबा हम सबको संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल देते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है, तो मैं पहले अपने आप से ये पूछूं कि मैं पक्का सच्चा पवित्र शुद्ध मन वचन कर्म से श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण हूं? कोई भी अशुद्धता, कोई भी शूद्रता इस जीवन में न रहे। ब्राह्मणपन के लक्षण हमारे जीवन से सबको अनुभव होने लगे, नए जन्म के नए संस्कार इमर्ज रूप में दिखाई दें, सब पुराने संस्कार मर्ज हो गए, समाप्त हो गए। तपस्या के माध्यम से हम पहले अपने आप को बहुत स्वच्छ पवित्र निर्मल बना करके बाबा के समान चमकता हुआ सितारा बनते हैं, इस ब्राह्मण जीवन के भाग्य का अनुभव होने लगता है। ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, पूरे कल्प में महान है, आने वाली जीवन फिर भी गोल्डन होगी, ये डायमंड है। संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं डायमंड युग में हैं, और डायमंड युग में जब भगवान की डायरेक्ट पालना हम सबको मिल रही है, पालना है, पढ़ाई है, श्रेष्ठ मत है। बाबा हम सबको तीनों रूपों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो संगम योगी जीवन में जब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, अप्राप्त शक्ति नहीं, अप्राप्त गुण नहीं, ऐसे समय में हमारी आत्मा का हीरो पार्ट, और हीरो पार्ट में मैं हीरा कहां तक बेदाग हूं, इस बात को हरेक अंदर से रियलाइज करे, महसूस करे। हम सबने अपनी दादी जी को देखा है, दादी प्रकाशमणि को देखा है ना सभी ने। दादी जी कैसे कर्मातीत बनी साकार ब्रह्मा बाबा को तो बहुत कम लोगों ने देखा, लेकिन नेक्स्ट में दादी जी ने बहुत गहरा पुरुषार्थ करके, मुझे जब भी दादी जी की पालना में बहुत नजदीक से रहा हूं, जब भी मैंने दादी को देखा मुझे उनके मस्तक पर चमकती हुई मणि ही नजर आती थी, उतनी भी प्रकाश मणि। और वो प्रकाश की मणि ऐसे चमकती थी जैसे देवहान से बिल्कुल न्यारी है, देवहान नहीं है, उपराम है, न्यारी है। एक दिन ऐसे ही बैठी थी तो दादी से हम लोग चिटचैट तो बहुत करते थे, पूछते थे कुछ ना कुछ। तो मैंने पूछा, दादी आप क्या पुरुषार्थ कर रही हैं, सब बातों से उपराम होती जा रही है, क्या विशेष पुरुषार्थ है आपका? तो दादी ने बहुत अच्छी तरह से दो शब्दों में ही जवाब दिया कि मैं अपने हीरे को अपने इस हथेली पर रखती हूं बुद्धि से, और सामने ला करके मैं उसके चारों ओर से नजर डालती हूं कि इस हीरे में कोई दाग तो नहीं है। और जब मैं चारों तरफ से उस पर बहुत गहराई से नजर डालती हूं तो मुझे कोई दाग नजर नहीं आता, और बाबा ऊपर से जैसे इशारे में कहता, बच्ची तू तो बेदाग ही बहीरा है, पूरा संपूर्ण वैल्यूबल डायमंड है, कोई दाग तेरे में नहीं। तो हम सभी भी इस ब्राह्मण जीवन में कहां तक बेदाग बने हैं, कोई भी दाग तो नहीं, क्योंकि दाग हीरे की वैल्यू को बहुत कम कर देता है। वैल्यू फिर भी है हीरे की, लेकिन अगर दागी हीरा है कहीं भी है तो उसको दाग को हीरे से निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब हरी वो जानते होंगे हीरे से दाग निकलता नहीं है, उसको घिसते हैं, उसको कट करते हैं, उसकी कई प्रकार की अलग अलग पार्ट करके फिर उसमें से वैल्यूबल बेदाग हीरा जो निकलता है उसकी बहुत कीमत होती है। एक बार मैं एक हीरे की ऐसे ही अपने भाइयों की दुकान थी उस पर गया था, तो बोला हीरा देखा है? हमने कहा देखा तो है, चलते फिरते पहनते हैं लोग, कोई अंगूठे में, कोई नाक में, कहीं ना कहीं डाल के पहनते हैं। बोला नहीं, चलो मैं आपको हीरा दिखाता हूं। पहले जमाने में हीरे को परखने के लिए कांच होता था, ऐसा जो मैग्नीफाई ग्लास जिसको बोलते उससे वो देखते थे। लेकिन आजकल साइंस के साधनों में इतना अच्छा हो गया है कि कंप्यूटर से बहुत छोटे हीरे को बहुत बड़ा रूप दे करके उसमें दिखता है सब कहां कहां क्या क्या है। मेरे को उसके आगे बिठाया, कहा भी दूरबीन है कंप्यूटर में और इससे आप देखो इसमें क्या है। मैंने देखा इतना बिल्कुल छोटा सा बिंदु जितना हीरा था। बोला 3 करोड़ का है। 3 करोड़ का है, देख करके सबने कौन लेता है? कहते इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, यहां से बॉम्बे से विदेश में कहां कहां जाता है, एक्सपोर्ट होता है, बहुत वैल्यूबल है। और इतने छोटे 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 सैकड़ों हीरे उनके पास ऐसे रखे हुए थे। तो मैंने उसको बोला, तुमने इस हीरे को तो परखने के लिए बहुत अच्छी मशीन लगाई है, देख रहे हो वैल्यू को पता चला है, तुमने कभी ऐसे ही अपने आत्मा रूपी हीरे को देखा है? हम तो उसको देखते हैं। कितना वैल्यूबल हीरा है आत्मा, इस शरीर के अंदर कितनी वैल्यूबल है, कोई भी दाग इस वैल्यू को खत्म तो नहीं कर देता। संगम युग पर हम सब ब्राह्मण आत्माएं बहुत बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत बहुत मूल्यवान हैं, जो गुणों से श्रृंगारी हुई हैं, जिनके पास सर्व गुण हैं, सर्व शक्तियां हैं, सर्व विशेषताएं हैं। कभी कभी उनकी सम्मान की लिस्ट भूल जाती है, लेकिन बाबा ने जितने हमें मान दिए, सम्मान दिए हैं, अगर हम उसको स्मृति में लाते हैं कि हम एक एक सारे ब्राह्मण परिवार के सारे इस सृष्टि झाड़ के बीज में तने में बैठी हुई आत्माएं सर्व के उद्धारक हैं, पूर्वज हैं, पूज्य हैं, और हमारे आधार से ये पूरा वृक्ष है। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे कल्प वृक्ष के तने में बीज के साथ तुम सभी ब्राह्मण आत्माएं तपस्या करती हो और तुम्हारी सबकी शक्तियों से पूरा वृक्ष हरा है। क्या कभी ऐसा तपस्या का स्वरूप हमारा होता है जो उस स्वरूप में हम बैठ करके अपने मन की बुद्धि की एकाग्रता के आधार से पूर्वज और पूज्यपन के समान में स्थित होकर के पूरे वृक्ष को इमर्ज करके उसको लाइट दें, शक्ति दें, जैसे सारे वृक्ष में वो शक्तियां फैल रही हैं। जितनी भी धर्म की आत्माएं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में चली गई, लेकिन सब धर्मों का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमारा बाबा है, हम उसकी डायरेक्ट वंशावली हैं। पूरा वृक्ष इसी तने के आधार से खड़ा है। थोड़ा सा अपनी वैल्यू को देखो। बाबा कई बार साधारण शब्दों में कहते हैं बच्चे जैसा सोचोगे जैसा करोगे आपको देख करके अनेक आत्माएं फॉलो करेंगी। एक एक सितारे में अपनी दुनिया है, हम सब वो सितारे हैं जिसमें अपनी अपनी दुनिया है। बहुत बड़े वृक्ष के तने में बैठे हुए बीज स्वरूप हम सब ब्राह्मण आत्माएं हैं, और हम सब ब्राह्मण आत्माएं अगर उस स्वमान में उस नशे में रहें तो जो कोई ऐसे संस्कार दिखाई देते हैं ऐसे लगते हैं ये तो बहुत छोटी बात है, ये नहीं होनी चाहिए, ये हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत नुकसान करने वाली है। कोई भी संस्कार को परिवर्तन करने के लिए नीचे से पुरुषार्थ करेंगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगी, ऊपर की स्थिति में आकर के देखेंगे तो लगे ये तो बहुत छोटी बात है, खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं है। कई सोच सोच कर ये कमी है, ये कमजोरी है, ये संस्कार है, बहुत प्रबल है, कैसे खत्म होगा, वो नीचे से ऊपर के ओर बढ़ रहे हैं, उनको बहुत मेहनत लगती है। बाबा ने हम सबको ऊपर की स्टेज में स्थित करके फिर कहा बच्चे देखो, जैसे आज कोई उड़ता है प्लेन में जाते हैं तो कितने भी बादल घने हों, पहाड़ हों, नदियां हों, नाले हों, कुछ भी हो, उड़ने वाले के लिए क्या है, इधर से उड़ा ऊपर से निकल आ गया। छोटी छोटी ऊपर से अगर कोई चीज देखते भी हैं तो बड़े बड़े शहर भी ऐसे दिखाई देते, खिलौने हैं। हम सबको भी बाबा कहता है बच्चे अपनी बहुत ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, बहुत ऊंचे सम्मान में स्थित रहो कि हम हैं कौन, जिनको स्वयं भगवान की पालना पढ़ाई श्रेष्ठ मत मिल रही है, साथ मिल रहा है, सहारा मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, उसकी छत्र छाया में हम सब पल रहे हैं, चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, हम हैं कौन। ब्राह्मण जीवन का सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है, साधारण बात नहीं है। हम सब ने द्विज जन्म लिया है, इसी जन्म में हम ट्रांसफर हुए हैं। ये शरीर जन्म लौकिक से मिला लेकिन जब बाबा ने अपना बना लिया तो उस जन्म से हम मर करके नए जन्म में आ गए, मर जीवा बन गए। अब इस मर जीवा जीवन के अंदर वो पास्ट के संस्कार जो कुछ हुआ किया वो इतना मर्ज हो जाए कि वो बार बार हमें परेशान न करें। इसलिए बाबा कहता है उसको जलाओ और उसकी राख को भी सागर की लहरों में बहा दो। तपस्या ऐसी करो जो कोई भी ऐसा पिछले जन्म का संस्कार है, चाहे इस जन्म में कोई पास्ट में ऐसे कर्म हुए हैं, चाहे अनेक जन्मों के पास्ट में ऐसे कर्म हुए हैं जिनसे संस्कार बन गए, और वो संस्कार ही अपना कर्म कराते रहते हैं, बोल बोलते हैं, संकल्प चलते हैं, कर्म करते हैं, संस्कारों के अधीन होकर के करते हैं। अब नए जन्म में उन संस्कारों को संस्कार करना, इसके लिए तपस्या की जरूरत पड़ी। ऐसी तपस्या की जाए, ऐसे योग किया जाए, ऐसे योग की अग्नि प्रज्वलित रहे जो अपने आप वो संस्कार समाप्त हो जाए और उसकी प्रैक्टिकल निशानी दिखाई दे, अंग अंग शीतल। कहते हैं योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल हो, जो मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति में रहे, उत्तेजना ही समाप्त हो जाए, आवेश आवेग खत्म हो जाए। आप सब तपस्या करके यहां से जा रहे हो, परीक्षाएं आती हैं। बाबा कहता है, अभी दो तीन दिन पहले बाबा कह रहे थे, जब कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो माया भी परीक्षा लेती है। जब कोई ऐसे संकल्प पक्का करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बातें आती हैं जो हमारे संकल्प को हिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी प्रकार की माया कोशिश करे, फिर से वो संस्कार वो कर्म न कराएं जो हमारी ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत है। ऐसा इस तपस्या भट्टी से हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। पास्ट को पास्ट कर दें और प्रेजेंट में कोई भी पास्ट की बात रिवाइज न हो, रिपीट न हो, कुछ भी हो, हमने वो संकल्प पक्का किया है कि उन संकल्पों के आधार से उन संस्कारों पर विजय हो जाए, तब कहेंगे योग के प्रयोग। ऐसा योग का प्रयोग किया जाए एकाग्रता के आधार से, स्थिरता के आधार से, बाबा के लौ में लीन होकर, लगन में मगन होकर, जो एकाग्रता से स्थिरता आ जाए, स्थिरता से स्पष्टता आ जाए, और स्पष्टता के बाद इतनी स्वच्छता हो जो मैं जो हूं जैसा हूं, बाबा जो है जैसा है, उसका अनुभव होने लगे। इन आंखों से देखने की चीज बाबा भी नहीं है, खुद को भी नहीं देख पाते हैं, उसको क्या देखेंगे। लेकिन अनुभव के सागर में हम खो जाएं और ऐसी स्वच्छता हो जो मैं जो हूं जैसा हूं उसको स्पष्ट अनुभव कर सके, बाबा जो है जैसा वो भी स्पष्ट अनुभव हो, अगर संपूर्ण पहचान इस ब्राह्मण जीवन में आ जाए। बाबा ने एक बार कहा था, जिस दिन संपूर्ण पहचान लोगे ना उस दिन तुम्हारा भी शरीर छूट जाएगा। बहुत बड़ी बात है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमने बाबा को अभी तक संपूर्ण पहचाना नहीं है क्या, कौन है बाबा। लेकिन उसको संपूर्ण जिस दिन से पहचान लिया, जिस स्वरूप में पहचान लिया, समाप्त हो जाएगा, संपन्न बन जाएंगे। बाबा जो है जैसा है, इतनी एकाग्रता और स्थिरता हो जो हम उसको स्पष्ट पहचान करके और उसकी श्रीमत का पालन कर सके। आज जो हमसे छोटी मोटी अवज्ञाएं हो जाती हैं, श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है, अलबेलापन आ जाता है, उसका कारण है हमने पहचाना नहीं। ये किसके महावाक्य हैं, कौन मुझे बार बार बच्चे बच्चे कहके समझा रहा है। यदि यथार्थ रूप से हम बाबा को पहचान लें तो सत्य वचन, भक्ति के अंदर भी इतनी भावनाएं होती हैं जो जरा भी संकल्प नहीं आने देते। व्रत लेते हैं, त्योहार तिथि पर कोई संकल्प लेते हैं, उसको आ जाता है तो समझते बहुत पाप हो गया, दान करो, ये करो, वो करो। हम सभी भी अगर इस बात को रियलाइज कर लें कि सचमुच इस ब्राह्मण जीवन का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और ये ब्राह्मण जीवन कितनी कीमती वैल्यूबल है, इसमें कोई भी अशुद्धता का दाग ना आए, एकदम प्योर रूप में बाबा हमको देखना चाहते हैं। और जब उस स्वरूप में आत्मा स्थित हो जाएगी तो अपने लक्ष्य की ओर अपने आप आगे बढ़ेगी, कोई पुरुषार्थ करने की मेहनत नहीं है। और कई बार इस समय बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हारी मेहनत को नहीं देख सकता, भक्ति में तुमने बहुत मेहनत कर ली, ज्ञान में आकर के भी मेहनत कर रहे हो, फायदा क्या है? मोहब्बत में समाये रहो, प्यार में खोए रहो, मेहनत है ही नहीं। इस ब्राह्मण जीवन में भी अगर कोई युद्ध है, मेहनत है, माना कहीं ना कहीं कोई ना कोई से अवज्ञाएं हैं। श्रीमत में कहीं ना कहीं मन मत या परमत का प्रभाव है। अगर हम बिल्कुल यथार्थ रीति से बाबा को पहचान करके, अपने जीवन को पहचान करके और श्रेष्ठ मत पर कदम रख करके चल रहे हैं, बाबा यहां तक भी कहते, बच्चे मैं तुमको कोई नए रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहता हूं। जहां पर हमारे माता पिता चले, जिस पर दादियां चली, तुम भी उनके पीछे पीछे आ जाओ। नया रास्ता नहीं है, नया रास्ता लेना होता है तो लगता है पता नहीं कैसा होगा। इन्होंने चल करके उस मंजिल को प्राप्त किया है। हमारे ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बने हैं, फरिश्ता बने हैं, अभी तक सेवा दे रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। अब कैसे बने उसकी विधियां बाबा ने साकार में भले नहीं सुनाई, लेकिन अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा ने क्या क्या किया है, हर कदम ब्रह्मा बाबा के सुनाए हैं। कैसे बाबा निराकारी रहे, कैसे निर्विकारी रहे, कैसे निरहंकारी रहे, कैसे क्या त्याग किया, क्या तपस्या की, किस प्रकार की सेवाएं की, कितना सा बच्चों के प्रति रहम दिल, दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, दयालु, कृपालु, रहम दिल, उदार दिल बन करके रहे। एक एक कदम को देखो, ये सब प्रैक्टिकल करके साकार सृष्टि पर हम सबको दिखाया है कर्म, और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और कोई नया कदम नहीं ले रहे हैं, उसी पर चल रहे हैं, नंबर वार चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं। लेकिन बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे इस कदम के सिवाय और कोई कदम न उठाए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया है। प्रैक्टिकल में कितनी तपस्या की, जो कर्म इंद्रिय जीत बना, एक एक कर्म इंद्रिय को अपने कंट्रोल में कर लिया। मेहनत बहुत की पहले शुरू शुरू में, जब तक शिव बाबा नहीं मिले थे तब तक ब्रह्मा बाबा मेहनत बहुत कर रहे थे। सुना होगा 1932 की डायरी बाबा की राइटिंग में है, उस समय बाबा ने गुरु किए हुए थे साकार में, और गुरु का ध्यान करने जब बैठते थे तो मन इधर उधर भटकता था, भागता था, तो बाबा कई बार मुरली में कहते, मैं अपने आप को चमाट मारता था, चुटकी काट लेता था, क्यों भागता है, किस लिए भागता है, किधर जाता है। लेकिन उसको समाप्त करने के लिए, उसके भटकने को बंद करने के लिए बाबा ने कितनी मेहनत की, एक एक को बुलाया, सामने हाजिर किया, ऐसे हाजिर किया जैसे कोई राजा दरबार लगाता है। राजाओं के दरबारें पहले लगती थी तो जितने कर्मचारी, जितने मंत्री होते थे, सब सामने बैठते थे राजा के सामने आकर के, और राजा एक एक से पूछता था, हे मंत्री तुम बताओ तुम्हारी कारोबार ठीक चल रही है, एक एक से पूछ करके फिर कहता था, क्या कमी है, क्या चाहिए, क्या जरूरत है बताओ। ऐसे ही बाबा अपने इन सूक्ष्म कर्म इंद्रियों से, मन बुद्धि संस्कार से, इन स्थूल कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों से, आंख नाक कान मुख हाथ सबसे पूछता था, बात करता था, तुम क्यों कहना नहीं मानते हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देते हो। और बाबा ने ऐसी मेहनत करके अपने आप को कर्मातीत स्टेज के समीप ले आया, शिव बाबा का रथ बना, और उसके बाद इतनी कन्याओं माताओं के बीच में रह करके एकदम न्यारा प्यारा पावन बन करके दिखाया, सबके संगठन के बीच में रहते अकर्ता बन करके दिखाया, बच्चे मैं कुछ नहीं करता हूं, बिना किए ही नरश्री नारायण नहीं बना, बिना किए बना क्या ब्रह्मा बाबा, बिना किए तो नहीं बना ना, बहुत कुछ किया है, लेकिन सब कुछ करके अपने आप को छिपा लिया, मैंने कुछ नहीं किया, कोई महिमा करे, कोई कुछ करे, बच्चे मैं क्या करता हूं, ये तो दलाल है, आप कभी इसको याद नहीं करना। देहधारी को याद करोगे तो गति सदगति नहीं होगी, उसको ही याद करना, ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं देता। लेकिन सब कुछ करके गुप्त रीति से अभी तक भी मैं कभी कभी कहता हूं गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भक्तों ने भी कोई तो अनुभव किया होगा, ऐसे डाल दिया क्या? डाला तो हम लोगों ने होगा, अभी मेहनत कर रहे हैं उसको मिटाने के लिए। 46 साल से वही आत्मा श्री कृष्ण की संपूर्ण बन करके श्री कृष्ण बनेगा, तब तो थोड़ा तो गिरावट आएगी ना, जन्म लेगा। इस समय की जो उसकी स्टेज है वो तो श्री कृष्ण से भी ऊंची है, शिव बाबा के समान है, भगवान है। इस समय की जो स्टेज है ब्रह्मा की वो दोनों समान है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, उनमें कोई अंतर नहीं है। अब वो समान स्टेज में 46 वर्षों से हम बच्चों की पालना कर रहे हैं अव्यक्त रूप में, इतनी मुरलियां चलाई है, पढ़ो देखो क्या नहीं गीता है उसमें, टोटल गीता है उसके अंदर अव्यक्त रूप में। 46 साल की मुरलियों की स्टडी करके तो देखो, ये वरदान ये स्लोगन जो निकाले इसी से निकाले ना, कोई ऊपर से तो नहीं आ गए। इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची पालना अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं, की है, तो जरूर उनका नाम तो कहीं ना कहीं आएगा ही, भले ब्रह्मा के रूप में नहीं आया क्योंकि उसने अपने आप को छिपाया है, भक्तों ने श्री कृष्ण के रूप में लिख दिया। इतना सब करके छिपा लिया और हम थोड़ा सा भी कुछ कर लेते हैं फटाफट आ जाता मैं कुछ करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो शायद सेंटर नहीं चलेगा, मकान नहीं बनेगा, सेवाएं नहीं होंगी, करने वाले को फट से अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, मैं अमान हो नाम हो शान हो, कुछ तो पूछा जाए, कहीं तो हमारी लिस्ट में नाम आना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा ने कितना निरहंकारी बन करके सब कुछ करके अपने आप को गुप्त किया। हम सबको कहता बच्चे फॉलो करो, सिर्फ 4 बातें फॉलो, चलो 3 बातें, 3-3 बातें मैं बहुत सारी सुना सकता हूं, लेकिन 4 बातें बाबा की मूल बातें। एक तो बाबा एकदम निमित्त हो गया, निमित्त मात्र, जैसे मैं कुछ नहीं करता हूं, कर्तापन के भान से मुक्त हो गया। और निमित्त समझने के कारण कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ बाबा 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 के सिवाय और कोई शब्द नहीं निकले। हमारी दादी ने भी वही शब्द फॉलो किए थे, दादी के मुख से ये निकलता था, बाबा कराता बाबा कर। कोई महिमा करके जाए, दादी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इतना बड़ा परिवार आप संभाल रहे, इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कुछ नहीं करती, वो कराता है। दादी जानकी को देखो, प्रभु लीला चल रही है, करावन हार करा रहा है, मैं कुछ नहीं करती, मैं तो दादी भी नहीं हूं। इतनी निमित मात्र, इतनी निरहंकारिता, इतनी निर्माणता कहां से आई? बाबा ने करके इन सबको अपने समान बना दिया, एक निमित्त, एक संपूर्ण निर्माण चित्त, नम्र चित्त। और जहां नम्रता आ जाती है वहां पर मधुरता स्वतः आ जाती है। जब तक नम्रता नहीं आती तब तक संस्कारों में मधुरता नहीं आती, इसलिए बाबा ने निमित्त भाव पैदा करके खुद निमित्त रह करके इतना सब यज्ञ को बढ़ाया, किया, कर रहा है, करा रहा है बच्चों से, लेकिन अपने आप को मैं निमित्त हूं, बाबा करने वाला है। कभी कहेगा बाबा करने वाला है, कभी कहेगा बच्चे करने वाले हैं, मैं कुछ नहीं करता। निमित्त निर्माण और फिर इतनी निर्मल मधुर वाणी, सम्मानजनक बोल। आजकल जितनी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, जो विघ्न आ रहे हैं सेवाओं में, संगठन में, अगर उसके मूल गहराई में हम सब जाएं तो पता चलता है मुख के बोल पर कंट्रोल नहीं है। और अगर मुख के बोल पर कंट्रोल आ जाए कि मुझे वही शब्द बोलने हैं जो दूसरों के मान को बढ़ाने वाले हों, सम्मानजनक बोल हों, आवश्यक बोल हों, जो जरूरी है वही बोल हों, सिद्धि देने वाले बोल हों, हम आप सब सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने ऐसे बोल हम बच्चों के बद बोले जो महावाक्य बन गए। दादियां ऐसे बोल बोल रही हैं जो आज उनके बोल सुनने के लिए लोग तरसते हैं। उजा दादी के बोल सुनने के लिए, बड़ों के बोल, ऐसे दादी कुछ बोलो, वरदान दो, आशीर्वाद दो। माना इन्होंने अपने बोल को कितना नियंत्रित किया, कितना उस पर कंट्रोल रखा। तो हम सबके बोल में वो निर्मलता, वो मधुरता, वो दिव्यता आ जाए, जो बोल वरदानी बन जाए। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। सारे दिन में एक दिन सुबह से रात तक, अमृत वेले आँख खुले ना, उसके बाद रात तक, रात को बैठ करके एक बार देखना कि क्या मैं सुबह से जितने बोल बोले उनको गिनती कर सकता हूं। अगर सचमुच गिनती वाले बोल मुख से निकलने लगे तो ये बोल जो निकलेंगे वो सिद्ध होने लगेंगे, ये महावाक्य बन जाएंगे। हम सबको बाबा अपने समान मास्टर सतगुरु बनाना चाहता है। सतगुरु वही है सतगति करने वाला। सतगति तभी करता है जब उसके बोल अनमोल हैं, महावाक्य हैं। तो निर्मल वाणी और निर्वाण स्थिति, निमित्त नम्रचित, निर्मल वाणी और निर्वाण स्थिति। निर्वाण स्थिति माना ही कि सदा वाणी से परे की स्थिति में रहने वाला। जब वाणी की परे की स्थिति रहती है वह है मूल वतन की स्थिति, परमधाम की स्थिति। साकार लोक की कोई भी बातें उसको प्रभावित नहीं करती, वह है निर्वाण स्थिति। कोई आकर्षण नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आत्मा एकदम निर्वाण में रहती है। अब समय अनुसार हम सभी कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी बन के पाठ बजाएं, लेकिन पाठ बजाते बजाते याद रहे अब तो मुझे जाना है। कई बातों से उपराम हो जाएंगे, कई आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव, जहां पर आत्मा अटक रही है उन सब से अपने आप मुक्त हो जाएगी। लेकिन वो निर्वाण स्थिति की स्मृति बनी रहे, मेरी स्थिति वो है, मुझे वहां जाना है, मैं उसके लिए राही हूं। ये जितने मार्ग हमने अपनाए हैं, जो हम कर रहे हैं, तपस्या भट्टी कर रहे हैं, क्लास करते हैं, सेवाएं करते हैं, जो सब कर रहे हैं, उनके पीछे उद्देश्य क्या है? आत्मा को पावन बनाकर, बंधन मुक्त बना करके मुझे जाना है। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट को ध्यान पर दो। बाबा चार सब्जेक्ट के रूप में हर मुरली चला रहा है, चाहे वो ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान की कोई पॉइंट से है, चाहे योग की गहराइयां हैं, योग से संबंधित है, चाहे धारणाओं पर विशेष ध्यान है, चाहे सेवाएं हैं। हर बात के पीछे एक ज्ञान की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट देखो। ज्ञान की पॉइंट जितनी हमको मिली है उसकी उद्देश्य क्या है? एक लक्ष्य, दूसरा उद्देश्य। ज्ञान मिला है, ज्ञान माना रोशनी, ज्ञान माना प्रकाश। और वो जब रोशनी मिल गई तो रोशनी हमें ठोकर खाने से बचाती है। सबसे ज्यादा इस संसार में ठोकर लग रही है कहीं ना कहीं बंधन में बंधने से, हिसाब किताब बनाने से। अगर हमारे पास ज्ञान की लाइट है तो उसकी पहली निशानी क्या होगी? कहीं पर भी वो आत्मा फंसेगी नहीं। दुख और धोखा देने वाले सभी हैं कलयुग के अंदर, किसी पर भावना के कारण विश्वास करके देख लो, पता नहीं क्या करेगा। कलयुग है ना, कहीं ना कहीं धोखा दे देते, कहीं ना कहीं धोखा मिल रहा है लोगों को। लेकिन मैं उस दुख और धोखे से बचा रहूं, इसलिए बाबा ने मुझे रोशनी दी है, ज्ञान दिया है, लाइट दी है। और वो ज्ञान की लाइट जिस आत्मा के पास है यूज करे अगर कि मैं आत्मा हूं, मैं परम धाम निवासी हूं, मैं सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए आई हूं, ये सब खिलाड़ी हैं, ये सब खेल चला है, नाटक चला है, सब पार्ट प्ले करेगा लेकिन न्यारा प्यारा, कहीं फंसेगा नहीं, कोई को फंसाएगा नहीं। तो अगर ये ज्ञान को प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ज्ञान जितना भी बाबा ने हमें दिया है, पढ़ा रहा है, उसके पीछे लक्ष्य है आत्मा मुक्त बन जाए, जीवन मुक्त स्थिति। मोक्ष नहीं है लेकिन जीवन में रहते हो मुक्त स्थिति का अनुभव करे। अगर सचमुच हम बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं तो उसकी पहली निशानी हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए कि मैं मुक्त हूं, कहीं पर भी मुझे कोई खींच तो नहीं करा, पुल तो नहीं करा है, कोई पुश करता है, कोई पुल करता है, कोई धक्का दे रहा है, कोई खींच रहा है। हम ध्यान रखें न कोई मुझे धक्के से चलाए और न मैं किसी के आकर्षण में हूं। ज्ञान की सब्जेक्ट, अगर ज्ञान को यथार्थ रीति से मैंने यूज किया है तो मैं आत्मा किसी के प्रभाव में प्रभावित नहीं हो सकती और कोई मेरे ऊपर अपना दबाव नहीं बना सकता है। दबाव तब बनता है जब हमारी कोई न कोई उनसे कामनाएं हैं। कामनाएं व्यक्ति को सामना करने नहीं देती। जिस दिन से कामना रहित बन जाएंगी, बाबा कई बार कहते हैं माताएं बंधन बंधन करती हो, बंधन किस चीज़, बकरी हो क्या, बांधते तो बकरियों को हैं, तुमको कैसे बांध सकते हैं। लेकिन कुछ न कुछ कामनाएं हैं, कुछ न कुछ हद के लगाव हैं, झुकाव हैं, प्रभाव हैं, बंधन हैं और उन बंधनों के कारण रो रहे हैं। जिस दिन शेर नहीं शक्ति बन गए उस दिन बंधन कहां रहेगा, सब अपने आप कट जाएंगे। कोई आपके मार्ग में रुकावट डाल ही नहीं सकता है। जब तेरे से कुछ लेना ही नहीं, मुझे भगवान खिलाएगा, दो रोटी खाएंगे, प्रभु के गुणगाएंगे, क्या करेगा कोई। लेकिन जहां कामना है, ये चाहिए, वो चाहिए, साधन चाहिए, सेवर चाहिए, कपड़ा चाहिए, लत्ता चाहिए, वहां बंधन है। अगर ज्ञानी तू आत्मा आप है तो बंधन मुक्त स्टेज का अनुभव करके देखो। अगर योग लगा रहे हैं, योगी तो आत्मा कहलाते हैं, तो आत्मा बिल्कुल सतो प्रधान, कोई मैल नहीं, स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए। योग की ऑब्जेक्ट ही सतो प्रधान बनना। जैसे आत्मा इस सृष्टि मंच पर उतरी थी उसी रूप में उसको जाना है। बने हैं हिसाब किताब, सबके ऊपर मैल है, कोई ऐसा नहीं कहेगा मैं बिल्कुल स्वच्छ बन गया। इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं, इसलिए तो योग लगा रहे हैं, भट्टियां कर रहे हैं। लेकिन वो मैल कहां तक निकली है, कितनी परसेंट में निकली है, उसको बीच बीच में जांच करो। बिल्कुल ये मैल खत्म हो जाएगी, लगाओ झुकाओ प्रभाव की आत्मा बिल्कुल प्योर डायमंड बन जाएगी। और वो डायमंड प्योर आत्मा एकदम बाबा के समान स्टेज में स्थित हो सकेगी, मिलन मना सकेगी। बाबा उस स्वरूप में लाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे विनाश काल के पहले उस स्वरूप में आके मेरे साथ सेवा करें, मदद करें, विश्व परिवर्तन के महान कार्य में योगदान दें। इसके लिए हम सब योग भट्टी करते हैं, संस्कार चेंज हो जाए, कोई भी संस्कार बार बार इमर्ज न हो, मर्ज हो जाए। धारणाएं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्य धर्म की स्थापना करनी है। धरत परिये धर्म न छोड़िए, धर्म के पीछे कितना सहन करना पड़ता लोगों को। धर्म के पीछे कहते हैं धर्म धक्के खिलाता है। हम सब एक सत धर्म की नींव है, उसकी स्थापना के निमित्त है, तो जरूर कुछ सहन करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, बातें आएंगी, परवाह नहीं करनी। उन्होंने तो कितना सहन किया है, धर्म पिताओं ने कितना सहन किया। कोई धर्म पिता जब तक धर्म स्थापना के लिए आया रहा तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई। जब वो चला गया उसके बाद उसका धर्म बना। हम सबको भी बाबा कहता है तुम किस सत्य धर्म की स्थापना की नींव डाल रहे हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और वो भी आधा कल्प के लिए, कोई थोड़े समय का नहीं है। अब उसके लिए इन धारणाओं को पालन करना, इन धारणाओं को धर्म के रूप में पालन करना, खान पान की शुद्धि है, पवित्रता है, संघ है, जो भी धारणाएं हमारी हैं, उन सब धारणाओं के पीछे कुछ न कुछ सहन करना पड़ेगा, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि सत धर्म की नींव है हम। और सेवा इसलिए कर रहे हैं कि राजधानी बन रही है। खूब सेवाएं करो, जितनी कर सकते हो, जो मिला है दान करो, दो, बांटो। राजधानी की स्थापना है, राज्य में ऊंच पद अगर लेना है तो उसके लिए सेवाएं जरूर करनी पड़ेंगी। इसलिए चारों सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को समझ करके, योग मुख्य सब्जेक्ट है और उस मुख्य सब्जेक्ट को विशेष आगे ला करके चारों सब्जेक्ट में प्रयोग करो, अपने आप पर प्रयोग करो। संस्कार जो भी ऐसे हैं, एकांत में बैठ जाओ, ऐसे बाबा को आह्वान करो, कैसे बुलाओ, जैसे ज्ञान सूर्य, सूर्य जिन निकलता है सवेरे सवेरे स्थूल में, प्रकृति के सूर्य को देखो, सवेरे की किरणें कितनी शीतल होती हैं। अब बादलों के बीच से निकलता तो किरणें बन जाती हैं, और वो किरणें धीरे धीरे अगर किसी कांच के ऊपर पड़ने लगी, भले सवेरे की शीतल किरणें पड़ रही हों, लेकिन कांच ने अगर ग्रहण कर लिया और उसके थ्रू रिफ्लेक्ट हो गई, क्या होगा, आग लग जाएगी। एकाग्र किरणें कहीं भी अग्नि पैदा कर सकती हैं। बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणों को ऐसे मन के ऊपर, बहुत स्वच्छ विचारों पर, कांच के ऊपर, कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं, मैं आत्मा बिल्कुल प्योर हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, उस पवित्र शुद्ध आत्मा के ऊपर, उस कांच के ऊपर शिव बाबा की लाइट लो और ऐसे एकाग्र करो कि जहां पर कोई प्रॉब्लम है, शरीर के ऊपर भी है, कोई ऐसी बीमारियां हैं उनके ऊपर, संबंधों पर है, कोई संबंध बहुत दुख दे रहे हैं, बार बार बिघन डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनको इमर्ज करो। इमर्ज करके फिर प्रयोग करो, याद नहीं करो उनको, इमर्ज करो बाबा के आगे, उन किरणों के आगे इमर्ज करो और वो बाबा की किरणें ऐसे लेकर के उसके ऊपर डालो, प्रयोग होगा। भिन्न भिन्न रीति से प्रयोग की विधियां बाबा ने हम सबको सिखाई हैं। संस्कार कई बार हमको पता नहीं चलते हैं, हमारे नेगेटिव हैं, ये ठीक नहीं है, ये नहीं होने चाहिए, इसलिए चलते रहते हैं। लेकिन कभी एकांत में जब बैठते हैं, बाबा की मुरली को ध्यान से सुनते हैं, मिलाते हैं कि बाबा क्या चाहता है, मैं क्या हूं, बाबा ऐसा चाहता है, कितनी ऊंची ऊंची बाबा की बातें, मैं कहां हूं, ये कहां है। अब सदा सुहागिन की मुरली परसों सुनी, भाग्यवान सुहाग, क्या वो सुहाग सदा मेरा कायम है, तिलक लगा हुआ रहता है सदा, कंगन बना हुआ है मर्यादा का, श्रृंगार है दैवी गुणों का, मैं सदा सुहागिन हूं। इतनी ऊंची बात बाबा बता करके कितने सारे शब्दों में एक शब्द ऐसा दे दिया, सुहाग, सुहागिन। लेकिन अगर इस पर चिंतन करो, मनन करो, तो पता चलता है कि बाबा हमको कहां ले जाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है। फिर भाग्य कितना ऊंचा बता रहा है, तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, संबंध का भाग्य, संपर्क का भाग्य, एक एक बात देखो बाबा कितनी गहराई से बच्चों को पढ़ा रहा है, उस रूप में बनाना चाहता है, इतने भाग्यवान हैं। या थोड़ा सा भी कुछ होता है, बाबा ये हो गया मेरे को, ऐसा हो गया, स्वस्थ, कहा बाबा ने, स्वस्थिति में स्थित रहने वाला, शरीर का कोई हिसाब किताब आएगा पूरा हो जाए, उसकी परवाह नहीं, उसको तो अगर गोली टिक्की देनी पड़ती भले खिलाओ, लेकिन आत्मा कभी भी रोगी न बन जाए उसके साथ साथ, उसका चिंतन नेगेटिव न हो जाए। तो इस प्रकार बाबा की मुरलियों का गहराई से चिंतन करके, उसको ध्यान से सुन करके, जो कोई कमी है, जो जिस प्रकार बाबा चाहता है, उसमें उसको पाने में जो हमारी मंजिल का राह है, पुरुषार्थ है, उसको चेक करो, वही कमी है, और उस कमी के ऊपर विशेष नजर डाल करके इसको मुझे समाप्त करना है। यह प्रयोग, पहले चीज समझ, समझ के बाद महसूसता, महसूसता के बाद तपस्या, और तपस्या में सहन करो, सामना करो, कुछ भी कुछ कर त्याग करना पड़े त्याग करो, बदल जाएंगे, वो संस्कार समाप्त हो जाए। नहीं तो क्या है, मुरली सुनो, योग करो, भोजन ब्रह्मा भोजन खाओ, संग रोज करो, अच्छा सेवाएं भी खूब करो, लेकिन कई बार संस्कार चेंज नहीं होते। 10 साल 20 साल 15 साल ज्ञान में चलते चलते भी जिस संस्कारों को लेकर के आए वो संस्कार कहीं ना कहीं फिर से इमर्ज हो जाते हैं। गुस्से के रूप में दिखाई देंगे, काम विकार के रूप में दिखाई देंगे, लोभ वृत्तियों के रूप में दिखाई देंगे। कभी ऐसा कोई पेपर आ गया वैसे कहेंगे मेरे को कोई मोह नहीं है, लेकिन जिस दिन कोई ऐसा पेपर आ गया उस दिन कोई आंसू रोक नहीं सकता, दुख की लहर आएगी और अहंकार तो अंत तक नहीं छोड़ता है। एक सताता है, दूसरा जलाता है, तीसरा फंसाता है, चौथा भटकाता है, पांचवा लटकाता है। ये पांचों विकार हम सबके महाशत्रु हैं और इनको बहुत सूक्ष्म रीति से अगर हम नहीं परख पाए तो वो संस्कार इतनी जल्दी समाप्त नहीं होंगे। कहेंगे हम तो जीत लिया, हम तो पवित्र योगी बन गए, हम तो बाबा के बच्चे बन गए। तो योगी के साथ साथ सभी प्रयोगी बन करके कोई भी संस्कार, कोई भी विघ्न, कोई भी बातें हो, कुछ समय तपस्या करके उसको परिवर्तन करना। बहुत अच्छी सभी ने भट्टी की है, हमको बता रहे थे भाई लोग कि बहुत अच्छी तपस्या चल रही है। तो सब भरपूर हो गए हैं ना अच्छी तरह से, चलो बहुत अच्छा है। ओम शांति।
कुछ पूछना है आपको?
और कुछ कोई को पूछना है? जी, एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। माना एक लक्ष्य हमने रखा है, उसको पाने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वो ऑब्जेक्ट होती है। लक्ष्य तो है हमको देवता बनना है, लेकिन उसके लिए लक्षण जो धारण कर रहे हैं, उद्देश्य को पाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। बाकी बाबा के साकार बाबा के समय तो मैं बचपन में था और बाबा के पत्रों से मेरी पालना हुई, क्योंकि 4 साल की उम्र में ही परिवार को ज्ञान मिल गया था। मम्मा खुद हमारे गांव में जाके गीता पाठशाला खोल के आई थी और साकार बाबा को लौकिक परिवार तो बार बार आता था मिलने के लिए, लेकिन मेरा भी कुछ अलग पार्ट था। बचपन में मैं परिवार में 3 भाइयों के बीच में अकेला बेटा था और जो हमारे पिताजी के बड़े भाई थे वो बिल्कुल एंटी थे, वो कुमार ही थे लेकिन एंटी थे ब्रह्मा कुमारियों से बिल्कुल, और उनको पता था कि अगर ये ज्ञान में चल गया तो फिर तो कुल बंद हो जाए, कुल दीपक कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए उन्होंने जहां तक बचाने का मुझे प्रयास किया खूब बचाया। जहां बाबा आए कानपुर आए नहीं मिला, मधुबन कभी आते थे तो मेरे पर कुछ करके कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते थे, तीर्थ कराने, कभी गंगा स्नान करने, कभी कहीं। इसलिए मैं साकार के समय तो आ नहीं पाया, लेकिन बाबा की नजर बहुत बचपन से ही पड़ी थी। इसलिए बाबा जो हर 15 दिन में पत्र लिखते थे, पिताजी तो पत्र व्यवहार चलता था, तो पिताजी को लिख देते थे, राजेंद्र बेटे को मेरी खास याद देना, राजेंद्र लौकिक में नाम था। तो बाबा की नजर तो थी लेकिन कोई कारण से मैं साकार में नहीं आया, और जब बाबा अव्यक्त हुए तो पहली बार मुझे लौकिक बहन यहां रहती थी वो लेके आई कि चलो घुमा के लाते हैं। तो मैं घूमने आया था, नाइन्थ में पढ़ता था। उन बाबा से जब पहली बार मिला, बाबा के प्यार का साथ का अनुभव पूछ रहे हैं, तो बाबा अपनी गद्दी पर आए थे कमरे में। बाबा की जो गद्दी पड़ी है ना, बाबा के कमरे में चारपाई है, गद्दी है। तो उस समय गुलजार दादी के तन में बाबा को गद्दी पर बुलाते थे, ऑफिस चल नहीं, भोग वोग नहीं रखते थे। दादी ऐसे बैठ जाती थी और बाबा आ जाते थे, और फिर बाबा पूरी पूरी रात बैठे रहते, सबसे मिलते थे, रात भर बच्चों को बुलाते थे एक एक से, कोई एक घंटा, कोई आधा घंटा। बाबा दृष्टि भी देते थे, उसको वरदान भी देते थे। तो ऐसे बाबा शाम को आ गए 7 बजे और बैठे रात को 2, 3, 4, और सब दादी के बाबा के पास आ करके मिलते थे, टोली खाते थे, रू रियान करते थे। तो जब मैं बाबा के पास पहली बार गया तो मेरी बहन मुझे लेके गई लौकिक, और मुझे मेरा परिचय देने लगी। तो बाबा को जब मेरा थोड़ा सा परिचय देना शुरू किया, बाबा इतना मुस्कराया, इतना प्यार से देखा, और बाबा ने कहा बच्चे बाबा जानता है। बस बाबा जानता है इतना मुस्कुरा के बोला, तो उसका बोलना बंद हो गया और मेरे को निश्चय हो गया कि मेरे को जानता है। क्या जानता है वो जानता था। फिर दूसरी बार जब मिला तो बाबा ने कहा तुम्हारी दिल है यहां रहने की, तुम भले दीदी दादी से बात करना। अब मैं छोटा था और लौकिक से तो बहुत मुश्किल थी छुट्टी मिलना, तो दादी को दीदी को जब मैंने कहा तो दादी ने मुझे अकेले में बिठाया झूले पर, बगीचे में झूला था ना, अभी भी है। तो एक तरफ दादी बैठी, एक तरफ मैं बैठा। दादी मेरे से बोलती है कि बाबा की भी नजर तुम्हारे पर, दीदी की भी नजर तुम्हारे पर, तुम समझते हो मुझे छुट्टी मिलेगी। मैं, दादी आप कहेंगे तो हम छुट्टी ले आएंगे, आप छुट्टी दे दो। तो बोली मैं तो समझती हूँ तुम अभी छोटे हो, 15 साल का तो था मैं, और तुम इकलौता बेटा हो परिवार में, 3 की प्रॉपर्टी है, 3 की दुकान, खेती, सब कुछ है, घर, तो तुमको कैसे छुट्टी मिलेगी। लेकिन फिर भी तुम ट्रायल करना, 1 साल के लिए जाओ पढ़ो और फिर ट्रायल करना, अगर पिताजी प्यार से छुट्टी दे तो आ जाना। तो मैं जब गया तो वहां तो दिल ही नहीं लगे, बाबा का बन गया मधुबन आया तो। वहां जब गया तो 1 साल तो पढ़ लिया, लेकिन जिस दिन लास्ट पेपर हुआ ना हाई स्कूल का, उसी दिन पेपर दिया और पत्र लेके वापस आ गया। पिताजी ने बहुत प्यार से पत्र लिख के दिया, क्योंकि बहुत निश्चय था कि अब विनाश होने वाला है। उस समय डिक्लेयर हुआ था 76 में विनाश हो जाएगा, तो पिताजी को बहुत पक्का था 76 में विनाश नहीं होगा तो हम सब छोड़ के घर से चले जाएंगे। और सचमुच बाबा ने सब छुड़ा दिया, हम तो सरेंडर हुए। 72 में आ गए, 72 से बाबा के घर में रह गया करके। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा पेपर आया, अम्मा ने शरीर छोड़ दिया। अम्मा शरीर छोड़ देती है तो घर में क्या होगा, चाचा जी कुमार, पिताजी भी कुमार हो गए, दादाजी तो थे ही कुमार, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं, कोई भी घर संभालने वाला नहीं, अकेले संभालती थी वो। लेकिन ड्रामा में वो कल्याणकारी ये था कि उसके बाद पिताजी चाचा जी सब सरेंडर हो गए, सब मधुबन आ गए, और अभी तक भी बाबा कुलदीपक हमारे घर में बैठा हुआ है। बेचा नहीं घर, दुकान भी है, दुकान बेची, खेती, घर सब है, लेकिन कुलदीपक बाबा है। गीता पाठशाला बहुत अच्छी चलती है, गांव वाले चलाते हैं और खेती भी संभालते हैं, जो तैयार होता मधुबन भेज देते हैं, और जब साल 2 साल 5 साल जब भी हम चक्कर उस साइड में लगाते हैं तो 1 दिन के लिए जाते हैं, मिल के आ जाते हैं सबसे। तो बाबा करण करावनहार है, संगम युग पर अपना नाटक खेल कर रहा है, हम सबको देखता है कि बच्चे कितना निश्चय बुद्धि है। निश्चय की परीक्षा है और कुछ नहीं, निश्चय अगर है तो सब कुछ सहज है। तो बहुत सहज रूप से सारा परिवार समर्पित हो गया, लगा ही नहीं कि मेरे आगे कोई बंधन है, सब पार हो गया। तो अभी घर में गीता पाठशाला है, बाबा ने मुझे सब सेवाएं जो दी, जो पढ़ाया सिखाया लिखाया वो मधुबन में ही, मैं लौकिक में कोई डिग्री लेके नहीं आया, मधुबन में टाइप सीखी, मधुबन में सिंधी सीखी, मधुबन में दादियों की पालना ली, बाबा ने सब सिखाया और सब देश विदेश में सेवा करा रहा है। ओम शांति।
आई जी, सभी की तरफ से एक छोटा सा प्रश्न है कि कर्म बंधन को हम कैसे काट सकते हैं, उसका सहज तरीका बताइए।
ऐसा है कि बाबा कहता है कर्म बंधन काटने के दो रास्ते हैं। एक तो इतने श्रेष्ठ कर्म करो, बाबा के साथ जुड़ करके बाबा की याद में रहकर कर्म योगी बन करके जो कर्म बंधन रूप न ले ले। पहले वाले बंधन तो योग बल से कटेंगे, अच्छी सेवाओं से कट जाएंगे, लेकिन अब नया बंधन कोई क्रिएट न हो। कर्म योगी स्थिति में रह करके जो कर्म करेंगे वो कर्म बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि कर्तापन का भान नहीं है। जो किया बाबा आपने करा लिया, समर्पित करो। और कर्म बंधन की निशानी एक दिखाई देगी तो खींचेगा अपनी तरफ, मानो योग में बैठे हैं तो वही याद आएगा, उसी तरफ बंधन की तरफ बुद्धि जाएगी। उस बंधन पर नजर रखो कि उस बंधन को काटने के लिए मुझे क्या करना है। ज्ञान योग की कैंची है उसको काटने के लिए। ज्ञान योग की कैंची से बाबा के ज्ञान को यूज करके, तपस्या करके इस बंधन को, बंधन महसूस तो करो कि बंधन है, महसूसता की शक्ति से उसको हम समाप्त कर सकते हैं। अगर महसूस नहीं करते बंधन है तो बंधन और जकड़ता जाता है, बंधते जाते हैं। कई आत्माएं गुप्त बंधी हुई हैं, कहीं ना कहीं से मेरा 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 का फेरा लगा हुआ है। और बाबा कहता है इस मेरे को तेरे में समर्पित करो। जो कुछ मेरा मेरा कह रहे हो ना, बुद्धि बल से वो बाबा को समर्पित करो। बाबा ये तो सब तेरा है, मुझे तो आपने केवल निमित्त मात्र बिठाया है। निमित्त होकर के कर्म करेंगे, उनकी सेवा करो, पालना करो, खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ करते हुए बैलेंस रहे न्यारा और प्यारा। बैलेंस से अगर आप उनकी पालना करेंगे तो आप न फंसेंगे ना आप में वो फंसेंगे। इसलिए न्यारा प्यारा बन करके कर्म करो, कर्तापन के भान से मुक्त होकर के करो, और बीच बीच में बाबा की योग की अग्नि से उस बंधन को काटने का प्रयास करो। धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, और जब मुक्त होंगे तो आपको हल्केपन का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा, सहज योगी जीवन का अनुभव होगा। जब तक बंधन है तब तक मेहनत है, मोहब्बत में रहो, मेहनत समाप्त हो जाएगी। जहां लगन होती है ना, वहां लगन अग्नि का रूप बन जाती है, और लगन का अग्नि का रूप अगर है तो विघ्न नहीं ठहरते, बंधन नहीं रहते। लगन को बढ़ा दो, बंधन कट जाएंगे। कई बार बाबा कहता है अपने को ईश्वरीय सेवा के बंधन में बांध लो तो वो बंधन कट जाएंगे। अगर वो बंधन बंधन करते रहेंगे तो ईश्वरीय सेवा कर ही नहीं सकेंगे, लेकिन जो सेवा ईश्वरीय करने लगता है वो बंधन धीरे धीरे अपने आप कट जाते हैं। कई युक्तियां हैं बाबा समय पर समय मुरली में सुनाते हैं जी।
कर्मयोग, कर्मयोगी फरिश्ता जी
पूछ रहे हो कि बता रहे हो क्या बट्टी तो पूरी कर्मयोगी फरिश्ता की है ना। ऐसा है कि एक फरिश्ता स्थिति है जो हम शरीर छोड़ करके फरिश्ता बनेंगे, जो ब्रह्मा बाबा बने, और एक है कि कर्म करते हुए कर्तापन के भान से लाइट होकर के रहना, हल्के होकर के रहना, जिसमें कोई मेरा तेरा बंधन नहीं है। ये कर्म योगी फरिश्ता स्टेज ऐसे है कि कर्म हम कर रहे हैं लेकिन बाबा करा रहा है, करावनहार वो है, निमित्त मैं हूं। और जितना जितना कर्तापन के भान से मुक्त होकर के या कर्म करके बाबा को समर्पित कर देंगे, बाबा आपने करा लिया, आप लाइट हो जाएंगे और फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। न बंधेंगे न किसी को बंधने देंगे। फरिश्ता माना ही जिसका अर्श फर्श से रिश्ता नहीं, जो अर्श निवासी है। तो बुद्धि कहीं भी देह और पदार्थ और संबंधों में फंसी हुई न हो। बाबा, बाबा की सेवा, बेहद में बुद्धि, तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे कुछ किया ही नहीं, बहुत लाइट है, हल्के हैं। तो कर्तापन का भान है, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर किया और समर्पित किया तो न्यारे हो गए, बुद्धि में नहीं रहेगा। आज किया तो कल उसका बोझ है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। तो कर्म को करना जरूर है, लेकिन बाबा की याद में और समर्पित करते चलो। ऐसा है कि अनादि अविनाशी नाटक के हिसाब से तो संस्कार है ही, उसकी बात को अगर हम कहेंगे तो विनाश नहीं होते हैं लेकिन परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन संगम युग पर वो सदा काल के लिए फिर से इमर्ज न हो, इसलिए उस समय विनाश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। 84 जन्मों के रिकॉर्ड के अनुसार आपके परिवर्तन हुए, लेकिन संगम युग पर रिपीट नहीं होते, इसलिए बाबा की याद में जब हम पक्का योगी बन करके, तपस्वी मूर्त बन करके रहते हैं, तो वो संस्कार बार बार इमर्ज नहीं होते, इसलिए कहते हो विनाश हो गए, समाप्त हो गए, स्वाहा हो गए। मना अभी तक रहे हुए हैं, हल्कापन नहीं हुआ, लाइट नहीं हुई, इसलिए बार बार इमर्ज होते हैं। समय पर देखो, कोई भी बीज अंकुरित कब होता है? जब पानी मिट्टी मिलता है। लेकिन अगर उस बीज को भून करके जला के रखो और फिर मिट्टी पानी भी दे दो, उगेगा? संस्कारों का जो बीज है, हमने ज्ञान योग से उसको दबा के रखा है लेकिन जलाया नहीं। पावरफुल योग की अग्नि ऐसी हो जो वो बीज ऐसे लगे जैसे जल गया, अभी ये इमर्ज नहीं होगा। पक्का योगी जीवन अगर हमारी है तो वो संस्कार जला हुआ है, आए लेकिन वो जला हुआ है, उसके अंदर हमको नहीं निकलेगा। चाहे जैसा संग मिले, चाहे जैसा पानी मिले, जैसा धरनी मिले, उसमें बीज नहीं निकले, लेकिन उसको जलाया नहीं है। सिर्फ संग में आए हैं, योग कर रहे हैं, पढ़ाई मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बीज जला हुआ नहीं, दबा हुआ है। तो इसलिए योग एकांत में बैठ करके ऐसा करो जो उस संस्कार को ऐसे लगे कि मेरा है ही नहीं, ये शूद्रपन का है, ये असुरों का है, मैं तो देवता बनने वाली हूं, मुझे तो फरिश्ता बनना है। लक्ष्य को सामने रख करके तपस्या करें ना, तो धीरे धीरे ऐसे लगे वो संस्कार भी जल गया, गल गया, फिर इमर्ज नहीं होगा बार बार। ऐसा है कि इस समय ब्रह्मा बाबा का एक लाइट का स्वरूप है। आपने एक क्लास मैंने भेजा था कुछ दिन पहले, दादी गुलजार का अनुभव, उसमें दादी से हमने ही प्रश्न किया था, दादी आप जब वतन में जाती हैं तो बाबा को किस रूप में देखते हैं? दो बाबा दिखाई देते हैं, एक साकार भी दिखाई देता है, एक अव्यक्त दिखाई देता है। कभी कहती हैं ब्रह्मा बाबा से मैं बात करके आई, कभी कहती शिव बाबा से बात करके आई। अब शिव बाबा से तो बात की नहीं जा सकती, निराकार है वो, परम धाम में तो कोई बात होती नहीं है। तो दादी ने एक बहुत अच्छा उत्तर उस समय हमको दिया था। दादी ने कहा कि जब हम फरिश्ते रूप में ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो केवल ये फेस दिखाई देता, लाइट का शरीर पूरा नहीं दिखता है, लेकिन पता चलता है ये व्यक्ति है फरिश्ते जैसा, बिल्कुल एकदम लाइट चेहरा दिखाई देता है, आंखें दिखाई देती हैं, मुस्कुराहट नयन दिखाई देते हैं, थोड़ा सा फेस दिखाई देता है, बाकी सारा शरीर हड्डी मांस वाला नहीं दिखता है। साकार बाबा को जब देखती हूं तो सारा दिखाई देता है। तो फरिश्ता स्थिति में जब हम बहुत अच्छा योग करते हैं, अच्छी स्थिति बन जाती है, तो ऐसे लगता है कि शरीर बिल्कुल लाइट में मर्ज हो गया, मैं एक लाइट का जैसे ओरा है। लाइट के ओरे में कोई फेस निकालो ना, हमारे पास एक चित्र बना हुआ है कहीं कहीं सेंटर पर लगा, शिव बाबा के लाइट के बीच में ब्रह्मा बाबा के नयन दिखाई देते हैं, बिल्कुल नयन ही दिखाई देते, पूरा फेस नहीं दिखता, इतना सारा फेस थोड़ा सा दिखता है, वो फरिश्ता स्वरूप है बाबा का। तो हम जब भी सूक्ष्म वतन में जाते हैं या अनुभव करते हैं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल मैं आत्मा उस लाइट की रेस में हूं, कहीं गए नहीं है, जाएंगे कहां, यही साकार वतन जैसे लाइट का वतन बन गया और मैं एक लाइट की ड्रेस में हूं और बाबा मेरे साथ लाइट की ड्रेस में है और हम दोनों ही दृष्टि के द्वारा मनुष्य आत्माओं को सकाश दे रहे हैं, ग्लोब को सकाश दे रहे हैं, जहां जरूरत वहां मदद कर रहे हैं, बाबा के साथ साथ हैं और फरिश्ते स्थिति से सेवा कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। ठीक है, ऐसा है कि ये बाबा की श्रीमत जिस प्रकार के बाबा के आगे बच्चे होते हैं वैसी बाबा देता है। अभी आपके मान लो बच्चे हैं, आपको शादी करानी पड़ती है, कुछ लेन देन करनी पड़ती है, नहीं करेंगे तो भी समाज आपको गलत दृष्टि से देखेगा, कहेगा देखा जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अभी अपना फर्ज से किनारा कर रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान क्या है, अपने परिवार को भी ध्यान नहीं देते, वहां डिसर्विस होती है। लेकिन अगर हम निर्बंधन है, जैसे हमारे पिताजी ज्ञान में थे, उनको बहुत लोगों ने भड़काया, देखूंगा तुमको भी बेटों की शादी करनी पड़ेगी, तुमको ये करना पड़ेगा, तुम कुछ लेन देन नहीं करो, उन्होंने कहा मुझे कोई लेन देन नहीं करनी, मुझे पता ही नहीं कितनी मासी मामा कौन है, मुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान इतना पक्का हो गया, उनको निश्चय इतना हो गया। अब बाबा के सामने वो बेटा आएगा, बाबा से पूछे बाबा मैं क्या, बाबा कहते बच्चे पास हो, तुमको क्या जरूरत है पापों से पाप आत्माओं से लेन देन करने की, कि उसको इतना निश्चय है, उसको इतना विश्वास है कि बाबा ही मेरा संसार है, बाबा के सिवा मुझे और कुछ नहीं है, तो बाबा उसको जरूर श्रीमत देगा, बच्चे पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करो, तुम निश्चय बुद्धि हो, तुमको तुम्हारे को मदद मिलेगी, और सचमुच उसको मिली और सबका सब परिवार समर्पित हो गया। लेकिन मान लो आपका कोई ऐसा हिसाब किताब है शरीर का या बच्चों का, आपको शादी करनी पड़ती है, आपको उनको सेट करना पड़ता है, तो आपको कुछ लेन देन करनी पड़ेगी, आपके लिए वो श्रीमत नहीं लागू हो रही है। सब अगर एक जैसी श्रीमत लागू करेंगे तो कई प्रकार की डिससर्विस होती है। इसलिए बाबा व्यक्ति को देख करके, अगर वो निश्चय बुद्धि है, पक्का है, पूरा परिवार ज्ञान में है, तो उसको तो कहेगा तेरे को पाप आत्माओं से लेन देन करने क्या जरूरत है, बिल्कुल नहीं करना। जैसे किसी को कहेगा अच्छा बच्चे सिनेमा देखना पड़ता, कोई हर्जा नहीं, फिर कभी कहेगा अरे सिनेमा तो बाप पाप की बाप है, देखना ही नहीं, तुम सिन की माँ है, एक को बिल्कुल मना है और दूसरे को कभी छुट्टी भी है, क्योंकि उसके आगे बंधन है, एक को बिल्कुल खाने की मना है, मिलिट्री वाला कोई बच्चा सामने आके बाबा से पूछता बाबा क्या करूं, तो ऐसा थोड़ी है भूखे मर जाओ, अच्छा दृष्टि देके खा लो, अब दृष्टि देके खा लो, उसने श्रीमत मिली मिलिट्री वाले व्यक्ति को, और हमने सुनने वाले ने समझा बाबा ने कहा ना दृष्टि देके खा लो, आपके लिए थोड़ी वो श्रीमत है, श्रीमत हर एक बच्चे के लिए अपनी है। तो बाबा तो बड़ी युक्ति से जैसे बच्चे वैसा उनको चलाता है, लेकिन लक्ष्य रखो हमको देवता बनना है, और देवता बनने में कोई भी अगर रुकावट आ रही है तो उसको अपनी मुरली की श्रीमत बाबा की श्रीमत को सामने रख करके पार हो जाओ, समझ गए साकार रूप में बाबा का, बैठ जाओ, मैं समझ गया आपकी बात, बैठ जाओ मैं बताता हूं आपको। ये अभी का प्रश्न इनका है, लेकिन ये बात बाबा ने शुरू में साकार के समय ही बाबा का अव्यक्त फरिश्ता रूप वहां इमर्ज होता था वतन में, संदेशियों ने आज से नहीं, लेकिन जब से स्थापना हुई गुलजार दादी ने सबसे पहले बाबा को उतर ऊपर देखा ट्रांस में, तो बाबा को जब बताया आकर के, तो बाबा कहने ऐसा कैसे होगा, मैं तो यहां बैठा हूं, ऊपर क्या देखा तुमने, कुछ और देखा होगा, नहीं बाबा आप जैसा ही मैंने वहां देखा। तब फिर बाबा ने ही स्पष्ट किया कि जब हर आत्मा का संपूर्ण स्वरूप परमधाम सूक्ष्मतन में रहता है, तो ये बाबा यहां बैठ करके बच्चियों को संदेशियों को कहता था बच्ची तुम जाओ ऊपर वाले से पूछ के आओ, माना ये संपूर्ण स्वरूप ब्रह्मा बाबा का वतन में इमर्ज रहता है, और उस ऊपर वाले से पूछना माना शिव बाबा उसके अंदर आकर के जवाब दे सकता है। आपका भी है, हम सबका ही है, सबका संपूर्ण स्वरूप है, इसलिए हम रेस कर रहे हैं कि उसको हम पालें, संपूर्ण स्वरूप तो सबका ही है ना। चलो ओके, ये संदेशी बैठी है ना दीदी
जी, उन्होंने अनुभव की बात सुनाई,
अच्छा अच्छा
जी, इसलिए उनके मन में प्रश्न उठा कि दो ब्रह्मा बाबा
के पास तो बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हैं, साकार ब्रह्मा बाबा अव्यक्त जो हुआ सुनाया अनुभव यहाँ नहीं सुनाया,
आज किसी को भूख नहीं लगी है, नहीं लगी है, देखो
हमारी कैलाश दीदी बैठी हैं, इनके अनुभव में ये तो बहुत बड़े जोरदार अनुभव हैं इनके, इनको बाबा ने वतन में पढ़ाया है, वतन में ही सब कुछ सिखाया है, बिल्कुल बोली और अनपढ़ बच्ची बाबा की, लौकिक की पढ़ाई नहीं किया कुछ, और बाबा को इस संदेशी के ऊपर बहुत विश्वास था, इनके अनुभव में मैंने खुद पढ़ा है, इन्होंने डायरेक्ट भी मेरे से सुनाया है कि बाबा जब अव्यक्त होने वाले थे तो एक साल पहले इनको बुलाया, और बाबा ने कहा बच्ची तुम जाओ इस ब्रह्मा में और उसमें संपूर्ण में कितना अंतर है देख करके आओ। तो ये सुनाया होगा, अभी यही सुनाया क्या?
नहीं,
ये नहीं सुनाया। अच्छा, तो ये जब गई एक साल पहले बाबा के पास यहां आई तो ऊपर देखा जा करके तो बाबा का ऊपर वाला रूप बहुत चमकीला था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, और इसमें थोड़ा सा डार्कनेस थी। तो पहले तो बता नहीं रही थी, बोला बाबा ऊपर वाला बड़ा सुंदर लगता है और इसमें थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा ही बताया कुछ। तो बाबा बस समझ गया कि इसमें अभी कमी है और वो संपूर्ण है। फिर बाबा ने एक साल जो तपस्या की वो उसका वंडरफुल इतिहास है। बाबा ने बच्चों को पहले गोद लेता था, समाचार सुनता था, पर्सनल बात करता, सबसे उपराम हो गया, सबसे अलग कर लिया अपने आप को। और एक साल तपस्या करने के बाद फिर इसको बुलाया, फिर बोला अब बच्ची जाओ देख के आओ। फिर जब दोबारा ये देखने गई तो कहती बाबा अभी तो जैसा ऊपर वाला ऐसा ही दिखाई देता है। बाबा समझ गया मैं संपन्न बन जाऊंगा। उसके बाद बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया। मैं समझता हूं 15-20 दिन पहले बुलाया था, दिसंबर में बुलाया, दिसंबर एंड में बुलाया है और 18-20 दिन के बाद बाबा व्यक्त। किसी को सुनाना नहीं, इसको इतना बोल दिया कि तेरा योग ठीक नहीं है इसलिए तेरे को संकल्प आते हैं कि बाबा भी चला जाएगा लेकिन वो रियल बाबा इसको दिखा रहे थे। तो वो बहुत अच्छे अनुभव इनके हैं, मैंने सुने हैं और मैगजीन में भी इन्होंने लिखा था एक बार। चलो ओके, ओम शांति। सामने बैठिए, पूछना चाहिए था है? बताना चाहिए आपको, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव इनके पास। चलो ओके,
समय बहुत कम पड़ रहा है,
1:30, 12:30
जी। बहुत बहुत तहे दिल से सबका दिल आपका थैंक्स मान रहा है, इसलिए
बाबा का थैंक्स,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानते हुए एक छोटी सी याद।
वाह, ये क्या है, घर में ही सेंटर पर थोड़ी है, विजय बहन के सेंटर पर मैं नहीं हूँ। साहिबाग की बहुत अच्छी टीचर है, परिचय दिया होगा ना, ये दो बहनें हैं, दोनों दो मूर्तियां हैं, कहाँ गई दूसरी? इनके मम्मी पापा, इनके जो पिताजी थे ना, इन्होंने ही सारा ओम शांति भवन का निर्माण कार्य किया, इंजीनियर, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट आपके पिताजी। दो ही बहनें हैं, माताजी पिताजी, भाई शायद अमेरिका है, लंदन में, कहाँ है, कनाडा में है, और दोनों बहनें समर्पित होकर साहिबाग में सेंटर संभाल रही हैं। एक अभी इनके साथ ही खड़ी थी, हाँ, डायमंड हॉल की जो डिजाइन है वो भी हमारे इनके पिताजी ने की है, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स, भाई भाई जो है वो भी इंजीनियर आर्किटेक्ट है, पूरा परिवार ही समर्पित है सेवा में। चलो ओके, ओम शांति।